अमायरा और आस्तिक साथ साथ अपार्टमेंट से निकलकर पार्किंग एरिया में आए। उन्होंने यहाँ कभी खुद को छिपाने की जरूरत नहीं महसूस की थी। हर आता जाता इंसान उन्हें देखता, यहाँ तक कि जानता भी था कि वे साथ रहते हैं, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके बारे में कुछ बोले। कुछ लोग जानते भी थे कि ये दोनों लिव इन में रहते हैं, साथ ही वे लोग आस्तिक को भी अच्छी तरह पहचानते थे। अगर किसी ने आस्तिक के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत की तो अगली सुबह वो इंसान जमीन के 6 फीट नीचे पाया जाता था। पार्किंग में पहुंचते ही आस्तिक और अमायरा के रास्ते अलग हो गए। अमायरा अपनी कार की ओर चली गई, जबकि आस्तिक की गाड़ी पहले से ही तिवारी जी लेकर खड़े थे। अमायरा से अलग होने से पहले आस्तिक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गालों को चूमा। जल्दी मिलेंगे, आस्तिक ने उसकी आंखों में देखकर कहा। अमायरा ने भी उसके गले में बाहें डालते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, हम जल्दी मिलेंगे। मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जब हम हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल मुझे जाना होगा। मेरे पति वापस आ गए हैं और अगर उन्होंने मुझे घर पर नहीं देखा तो सवाल करेंगे, और तुम जानते हो ना वे मेरे साथ क्या करेंगे। आस्तिक का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया, लेकिन अमायरा उसके गुस्से को महसूस कर सकती थी। उसने आस्तिक के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, आस्तिक शांत रहो, तुम जानते हो ना इस समय हमें संयम रखना होगा। आस्तिक ने मुस्कुराते हुए उसके हाथों को पकड़ा और उसकी उंगलियों को चूमते हुए कहा, बिल्कुल स्वीटहार्ट, मुझ पर भरोसा रखना, मैं तुम्हें एक दिन उससे दूर ले जाऊंगा। आस्तिक और अमायरा अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए और उनकी गाड़ियां विपरीत दिशा में चली गईं। आस्तिक अपने घर की ओर जा रहा था जबकि अमायरा अपने विला की ओर। शाम को आस्तिक और अरुणिमा साथ साथ पार्टी में शामिल हुए। आस्तिक को पता था कि अरुणिमा पार्टी में अच्छा नाटक करेगी। पार्टी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसा आस्तिक ने सोचा था। किसी ने उनके रिश्ते पर शक नहीं किया था। उन्हें बस इस पार्टी में एक दूसरे को सहना था। इसके बाद सब कुछ पहले जैसा चलता रहता। आस्तिक को यकीन था कि पुष्कर जी आज रात अपने रिटायरमेंट की घोषणा करेंगे, लेकिन उनके रिटायरमेंट के साथ साथ जो घोषणा हुई उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आस्तिक अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया और अरुणिमा पार्टी छोड़कर गार्डन में चली गई। लेकिन आस्तिक अभी भी लाइब्रेरी में बैठा सब कुछ सोच रहा था। वो जल्द से जल्द इन सबसे बाहर निकलना चाहता था, लेकिन जितना वो इससे बाहर निकलने की कोशिश करता, ये दुनिया उसे और ज्यादा अपने अंदर उलझा देती थी। पहले ये दिखावे की शादी, फिर आज की पार्टी में उसे एक वारिस की मांग करना, ये सब उसके प्लान का हिस्सा नहीं था। आस्तिक इन सबके बारे में सोच सोचकर परेशान हो रहा था, लेकिन नेहा जी के समझाने पर उसने खुद को थोड़ा कंट्रोल किया। ड्रिंक खत्म करके उसने खुद को रिलैक्स किया और फिर से पार्टी में शामिल हो गया। दूसरी तरफ पार्टी के गार्डन में अरुणिमा अकेली बैठी हुई थी। पार्टी हॉल में जब पुष्कर जी ने उसकी और आस्तिक के वारिस का जिक्र किया तो अरुणिमा एकदम दंग रह गई। उसका चेहरा लाल हो गया और दिमाग धुंधला हो गया। उसके चारों तरफ ताली बजाने की आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन वे भी धीरे धीरे धीमी पड़ने लगीं। अरुणिमा का दिमाग इतना खाली हो चुका था कि अब कोई आवाज उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अरुणिमा को अचानक घुटन महसूस होने लगी। उसका शरीर जैसे वहां रुकने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने में सांस ही नहीं आ रही हो। धीरे धीरे कदम पीछे लेते हुए वो पार्टी हॉल से निकलकर गार्डन एरिया में चली गई। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अरुणिमा किसी की तरफ देखे बिना चुपचाप वहां से निकल गई। इस वक्त अरुणिमा गार्डन में अकेली बैठी थी। उसकी नजर आसमान की तरफ थी। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने पेट पर रख लिया। अचानक उसका पूरा शरीर जैसे करंट की लहर से भर गया। पेट की तरफ देखते हुए उसने कहा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक बच्चा? मैं बच्चा कैसे पैदा कर सकती हूँ? ये नामुमकिन है। अरुणिमा अपने ही विचारों में गुम थी। तभी उसने आस्तिक के बारे में सोचा। वैसे उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि इस वक्त उसे कोई पार्टी में ढूंढ रहा होगा या नहीं, लेकिन वो अच्छी तरह जानती थी कि आस्तिक को बच्चे वाली बात पसंद नहीं आई होगी। वो तो अरुणिमा के साथ खड़ा रहना तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। फैमिली प्लानिंग करना तो दूर की बात थी। दोनों ही अपनी शादी में खुश नहीं थे। दोनों बस एक दूसरे के साथ दिखावा कर रहे थे। ऐसे में एक दूसरे को स्वीकार करना और बच्चे के बारे में सोचना दोनों के लिए ही नामुमकिन था। डरते हुए अरुणिमा अपना फोन तलाशने लगी। फ्लैशबैक की धुंधली यादों में खोई हुई उसने फोन निकाला और अपनी माँ का नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी बजती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। अरुणिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस वक्त अपनी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत थी। वो उनसे बात करना चाहती थी। लगातार चौथी बार फोन बजा, लेकिन इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। गुस्से में उसने फोन गार्डन की घास पर फेंक दिया। वो पागलों की तरह रो रही थी और इधर उधर देख रही थी। गार्डन में रोशनी तो थी, लेकिन कोई इंसान नहीं था। इस अकेलेपन में उसे और भी ज्यादा तन्हा और असहाय महसूस हो रहा था। कौन था उसके पास? वो सच में अकेली थी। उसके माता पिता ने शादी के बाद उससे कभी ठीक से बात नहीं की थी, ना ही मिलने आए थे। आस्तिक ने उसे दूसरे घर में ले जाकर ऐसे छोड़ दिया था जैसे वो कोई सजावट का सामान हो। रायचंद खानदान से क्या ही उम्मीद करती? जब उसका खुद का पति उसकी परवाह नहीं करता तो और कौन करेगा? अरुणिमा के पास देखा जाए तो कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल अकेली थी। अचानक उसका सीना भारी हो गया। उसके दिल में तेज दर्द उठने लगा। रोते हुए उसने अपने सीने पर हाथ रखा और उसे सहलाने लगी। इस दर्द को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आखिर कोई उससे बच्चे की उम्मीद कैसे कर सकता है? हाँ, वो और आस्तिक शादीशुदा हैं। लोगों की नजर में वे पति पत्नी हैं। ऐसे में अगर खानदान उनसे बच्चों की उम्मीद करता है तो इसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी शादी की सच्चाई नहीं लाना चाहती थी। ये भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आस्तिक चाहता था कि उनकी शादी का सच राज ही बना रहे। इतना तो वो आस्तिक को जानती थी कि अगर उसे बच्चा चाहिए भी होगा तो वो अरुणिमा से नहीं होगा, क्योंकि आस्तिक ने कभी अरुणिमा को छुआ तक नहीं था। बिना छुए प्रेग्नेंट हो जाना, अरुणिमा कोई जादूगरनी थोड़ी ना है। अरुणिमा को पहले से पता था कि आस्तिक की जिंदगी में कोई दूसरी औरत है, और अगर उसे बच्चा चाहिए भी होगा तो शायद वो उसे दूसरी औरत से होगा, अरुणिमा से नहीं। आस्तिक इस शादी से निकलना चाहता था और अरुणिमा भी, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इस जहरीली शादी को अभी और निभाना था। अरुणिमा अब भी गार्डन के बेंच पर बैठी हुई थी। आंसू सूख गए थे लेकिन चेहरे पर दर्द अभी भी था। वो लगभग एक घंटे से वहीं बैठी थी और तारों को देख रही थी। तभी उसे अपने पीछे किसी आहट का एहसास हुआ। पीछे पलटकर देखा तो वेटर की वर्दी में एक लड़की खड़ी थी और उसकी तरफ देख रही थी। मैडम, आपके हस्बैंड ने मुझे आपको बुलाने के लिए भेजा है। अरुणिमा ने लड़की की बात सुनी लेकिन उसे कोई खास हैरानी नहीं हुई। अगर आस्तिक उसे वापस पार्टी में बुला रहा है तो इसका मतलब पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है और वे दोनों ही आज की पार्टी के सेंट्रल ऑफ अट्रैक्शन हैं। तुम जाओ, मैं आ रही हूँ, अरुणिमा ने लड़की से कहा। लड़की ने जवाब दिया, मैडम उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपको साथ लेकर आऊं, दरअसल वे आपको अपने कमरे में बुला रहे हैं। लड़की की बात सुनकर अरुणिमा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने हैरानी से पूछा, क्या आस्तिक मुझे कमरे में बुला रहे हैं? तुमने ठीक से सुना है ना? लड़की ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, जी मैडम, उन्होंने यही कहा है कि वे आपको अपने कमरे में मिलना चाहते हैं और वे थोड़े गुस्से में भी हैं। प्लीज मैडम, जल्दी चलिए। इतना कहने के बाद वो लड़की वहां से थोड़ा पीछे हट जाती है। अरुणिमा उसे हैरानी से देखती है और फिर कहती है, ठीक है तुम चलो, मैं आ रही हूँ।
लड़की ने सिर हिलाया और वहां से पार्टी की तरफ चली गई। अरुणिमा कुछ देर सोचने लगी और फिर उसने सोचा, शायद आस्तिक को आज की अनाउंसमेंट के बारे में अकेले बात करनी है। शायद उसने कुछ सोच रखा होगा कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। इसीलिए वो वहां से उठती है और एक गहरी सांस छोड़ते हुए हवेली की तरफ चल देती है। वो सीधे आस्तिक के कमरे की ओर बढ़ जाती है। अरुणिमा के हाथ पसीने से भीगे हुए थे। वो अभी इसी बारे में सोच रही थी कि आखिर आस्तिक ने इस बारे में क्या फैसला लिया होगा। ये पूरी तरह उसी के ऊपर निर्भर करता था। उसके पिता ने जो घोषणा की थी उसके तहत उन दोनों के लिए ये बस एक सपना ही हो सकता था। ना तो आस्तिक को ये मंजूर था और ना ही अरुणिमा इस चीज़ को स्वीकार करने वाली थी। गैलरी में अपने कदम बढ़ाते हुए अरुणिमा बस यही सोच रही थी। पर जैसे ही वो आस्तिक के कमरे में एक बार फिर से जाती है तो हैरान रह जाती है। कमरा पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। अरुणिमा हैरान हो गई। अभी एक घंटे पहले तो वो कमरे में आई थी, तब तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था, पर अब इस कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? यही सोचते हुए अरुणिमा ने अपना हाथ स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ाया। उसने दरवाजे के पीछे लगे स्विच बोर्ड की तरफ अपनी उंगलियां रखी ही थी कि अचानक से उसे अपनी बाजू पर एक जकड़न सी महसूस होती है। वो चौंक जाती है और इससे पहले कि वो कुछ हरकत कर पाती, उसे अपनी नाक पर एक कपड़ा महसूस होता है। उसी के साथ एक तेज गंध ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया। किसी ने अरुणिमा की नाक पर क्लोरोफॉर्म लगाकर उसे बेहोश कर दिया था, और देखते ही देखते अरुणिमा वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। आस्तिक वापस पार्टी में आ गया था, लेकिन इस वक्त उसकी नज़र सिर्फ पुष्कर जी की तरफ थी, जो अभी भी अपने माफिया ग्रुप के साथ खड़े थे। इस बार वे काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। जितना वे खुश नज़र आ रहे थे उतनी ही नफ़रत आस्तिक को हो रही थी। उसने अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस ली थीं और गुस्से में अपने पिता को देखते हुए मन ही मन कहा, एक बार फिर से आप जीत गए डैड, पर आस्तिक रायचंद ऐसा इंसान नहीं है जिसके साथ खेल खेला जा सके। आपने बहुत कंट्रोल कर लिया है मेरी ज़िंदगी को, अब से अपने डिसीजन मैं खुद लूँगा। आस्तिक के होठों के किनारे थोड़े मुड़ गए और उसकी आंखों में अपने पिता के सबसे दर्दनाक अंजाम का मंजर आ गया, जिसे वो भविष्य में सच करने की कल्पना कर रहा था। नेहा जी आस्तिक के पास आती हैं और कहती हैं, अरुणिमा कहाँ है? आस्तिक जहरीली मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहता है, डोंट वरी मॉम, मारा नहीं है मैंने उसे, मतलब अभी तक तो नहीं मारा, आगे का कह नहीं सकता, फिलहाल मुझे नहीं पता वो कहाँ है। आस्तिक की बात सुनकर नेहा जी उसे घूरती हैं और कहती हैं, अभी के लिए अपने जज्बातों पर काबू रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बात हाथ से निकल जाए। नेहा जी ने गुस्से से घूरती हुई नज़र से आस्तिक को देखा, पर तभी उनके आसपास कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। आस्तिक और नेहा जी ने देखा कि लोग उनकी तरफ देख रहे थे और धीमे स्वर में कुछ बातें कर रहे थे। आस्तिक ने गुस्से में उन सब की तरफ देखा, तभी उसकी नज़र प्रोजेक्टर पर गई और जो उसने देखा उसने उसके माथे की नसें खींच दी और उसकी आंखें कठोर हो गई। उसकी नाक गुस्से में भड़क रही थी क्योंकि प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चल रही थी। आस्तिक का शरीर गुस्से से कांप रहा था। उसकी मुठ्ठियां जवाब दे चुकी थी। उसने कमर पर रखी हुई पिस्तौल निकाली और उसे अनलॉक कर दिया। गुस्से में वो प्रोजेक्टर को देखते हुए बोला, ये लड़की आज अपनी जिंदगी पर पछताएगी। हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरी इमेज खराब करने की? किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझ पर कीचड़ उछाल सके, लेकिन इस लड़की ने आज ये गलती कर दी, आज तो ये मरी। गुस्से में आस्तिक ने जोर से टेबल पर लात मारी और सामने रखा हुआ एनिवर्सरी केक अगले ही पल जमीन पर गिरकर धूल चाट रहा था। आस्तिक ने किसी की भी परवाह नहीं की। कोई उसे कुछ कहता, उससे पहले ही वो वहां से निकल गया।